कहीं दूर थी और जो शाखा थी छोटी थी और उसका जो लामा था वो बूढ़ा हो गया था और मृत्यु करीब थी। किसी उत्तराधिकारी की चाह थी, चाहिए था, तो उस छोटी शाखा से उस गुरु ने, उस लामा ने अपने एक सन्यासी शिष्य को हेडक्वार्टर्स कहो उसको, बड़ी शाखा जो थी, बड़ा जो उनका मुख्यालय था, बड़ा आश्रम लासा में, वहां भेजा ताकि बड़े आश्रम से कोई योग्य सन्यासी आए और वो छोटा आश्रम जो है वहां का कार्यभाग संभाले। तो छोटे आश्रम से सन्यासी बड़े आश्रम में पहुंचा और वहां के प्रधान से उसने कहा कि ऐसे ऐसे हमारी जो छोटी शाखा है वहां पर एक लामा की आवश्यकता है, तो किसी योग्य सन्यासी को हमारे साथ भेजिए। तो गुरु कहते हैं मैं उन सबको तुम्हारे साथ भेज दूंगा। तो वो सन्यासी कहता है कि सबका मतलब क्या, मुझे तो एक ही चाहिए। तो गुरु कहते हैं भेजूंगा तो मैं कई, लगभग 12 है मेरे पास, परंतु एक ही पहुंच पाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहो। तो दूसरे दिन सुबह सुबह वह गुरु उस सन्यासी के साथ अपने 12 शिष्यों को, जो कि सन्यासी है, लामा पद के योग्य है, उनके साथ भेज देता है। सुबह सुबह वो सन्यासी उन 12 शिष्यों के साथ निकलता है। दूसरा जो आश्रम था, छोटा आश्रम शाखा, वो पैदल यात्रा थी तो कुछ हफ्ते लग जाते थे पहुंचते पहुंचते। तो वो 12 शिष्य और वो सन्यासी चल पड़े। बीच में बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे गांव आए, बहुत सारे शहर आए, पहाड़ी आई, जंगल आए। तो जब चल रहे थे सब मिलकर, अचानक वहां पर कुछ राजा के सिपाही आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे राजमहल का जो राज गायक है, अचानक उसकी मृत्यु हो गई है, आप में से यदि कोई चले तो बहुत अनुकंपा होगी। तो उसमें से एक शिष्य जो कि गाना जानता था तैयार हो गया तुरंत और उसने कहा कि मैं जाऊंगा, बचपन से इस आश्रम में हूं, कभी गाने का मौका नहीं मिला, मेरी जो प्रतिभा है वो मरी जा रही है और इतना अच्छा नियति ने अवसर दिया है तो क्यों ना मैं जाऊं। और वो तैयार हो जाता है और उनके साथ चला जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे राज्य में पहुंचते हैं, वहां पर राजा के कुछ सिपाही आते हैं और कहते हैं राजा की जो कन्या है उसे नृत्य सिखाने वाले की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्या आप में से कोई नृत्य जानता है। तो एक सन्यासी तुरंत तैयार हो जाता है जिसे नृत्य का ज्ञान था, वो कहता है कि मैं आऊंगा। उन 12, अभी जो 13 थे, 11 थे, उनके साथ जो सन्यासी था वो कहता है कि पर हमें तो जाना है वहां उस आश्रम में, आप सबको भेजा गया है लामा बनने के लिए। वो कहता है ऐसा अवसर बाद में कहां आएगा। तो वो उनके साथ हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, तो एक जगह पर एक गुरु कुछ प्रवचन दे रहे होते हैं और वो प्रवचन इतना मीठा होता है और इतना मधुर होता है और इतना गुह्य होता है कि उसमें से एक सन्यासी आकर्षित हो जाता है और वो सुनना चाहता है उस सन्यासी को, उस गुरु को। उसकी वाणी में कोई एक अद्भुत आकर्षण था और बाकी अपने बाकी शिष्यों से वो कहता है कि मैं थोड़े देर बाद आऊंगा, आप लोग सब आगे जाओ। वो वहीं रुक जाता है और काफिला आगे बढ़ता है। तो उसमें से एक शिष्य कहता है कि और कितना चलना है, मैं थक गया हूं, मुझे थोड़ी आराम की आवश्यकता है और मुझे थोड़ा सो जाना है। तो एक वहीं सो जाता है और आगे बढ़ते हैं और उसमें से एक जो सन्यासी होता है, जब एक नगर से गुजरते हैं तो पाते हैं उस नगर की सजावट। सोचने लगता है बचपन से उस आश्रम में हूं, जीवन में कोई रस ही नहीं है। वही दिनचर्या, वही सेवा, वही ध्यान की विधि, वही रोज रोज का ज्ञान और जीवन एक उदासी से भर जाता है, एक ऐसा विषाद। तो वो कहता है कि मैं अब आगे नहीं आऊंगा, जीवन व्यर्थ लगने लगा है, पता नहीं वहां जाने के बाद इतने सारे लोग हैं मैं बन पाऊंगा या नहीं। संभावना तो है इंचार्ज बनने की, परंतु कंपटीशन वाले बहुत है। तो वो कहता है कि बस मैं तो इसी नगर में रुक जाऊंगा, ये आश्रम का जीवन, ये सन्यस्त जीवन, ये समर्पित जीवन अब मेरे मन को भाता नहीं है, मुझे यहीं रुक जाना है। देखता हूं बचपन से ही आ गया था इस आश्रम में, बुद्ध ने तो स्वयं ही सारा कुछ भोगा, बाद में त्याग किया। जिन चीजों को मैं जानता ही नहीं उनको मैं क्या त्यागू, पहले जानू, पहले मुझे भोगने तो दो, उसके बाद में मैं छोड़ूंगा। तो वो सन्यासी वही रुक जाता है, वो शिष्य। समुदाय आगे बढ़ता है और आगे एक किसी दूसरा दूसरी जगह का एक व्यक्ति जो कि संपूर्ण नास्तिक होता है और वहां आके कहता है ये बौद्ध धर्म झूठा है, ये बुद्ध झूठा है, सब कुछ झूठा है, अगर वाद विवाद करना है तो मेरे साथ वाद विवाद करो और ये जानो सत्य क्या है असत्य क्या है। एक सन्यासी होता है उनमें से, उसका अहंकार जागृत होता है, वो कहता है कि वाद विवाद और मैं पीछे हटू हो नहीं सकता, जब तक इसको हरा ना दूं तब तक मैं यही रुकूंगा। बाकी सन्यासी उसको समझाता है कि हमें तो जाना है वहां लामा बनने, वो कहता है हो नहीं सकता, जान ही चली जाए पर अभी इसको हरा के ही आऊंगा। तो वो वहीं रुक जाता है और आगे बढ़ते हैं। तो किसी दूसरे आश्रम के कुछ व्यक्ति वहां आते हैं और कहते हैं कि हमारा एक छोटा सा आश्रम बाजू में भी है, हमारा भी लामा जो है वो मर गया है, हमारा प्रधान। और एक सन्यासी के पास जाके कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर बहुत तेज है और वहां पर कईयों का उद्धार करना है, हमारे आश्रम में सब नए लोग हैं और उस गांव के भी लोग बहुत अंधकार में है, उनका कल्याण करने आओ, उनका परिवर्तन कौन करेगा, एक एक घर में अज्ञानी है। और विश्व परिवर्तन का भाव जागता है और वो निकल पड़ता है उनका कल्याण करने। सन्यासी उसे समझाता है कि तुमने स्वयं का भी अभी किया नहीं है पूरा कल्याण, वो कहता है नहीं मैं नहीं रुकूंगा और वो जाता है और काफिला आगे बढ़ता है। दसवां शिष्य जब एक वन से गुजर रहे होते हैं तो देखता है वन कीड़ा पिकनिक करते हुए उसके ही पुराने मित्र बचपन के, उसके ही गांव के जो छोड़ आया था उनको और सन्यासी हो गया था। देखता है कितने वो सुखी है, और इस आश्रम में मैंने क्या पाया, और उनके साथ सोचता है मैं अब इन्हीं के साथ कुछ पल बिताऊं। मेरे पुराने मित्र है, वो मित्र भी उसे पुकारते हैं, आओ आओ। तो बाकियों को वो कहता है कि मैं थोड़ा देर यहीं रुकूंगा। सन्यासी फिर उसे समझाता है, परंतु वो जान लेता है ये रुकने वाला नहीं है, और काफिला आगे बढ़ता है। अब तो केवल बहुत ही कम लोग रह गए, तीन ही रह गए। उनको एक ज्योतिषी मिलता है। वो ज्योतिषी कहता है मैं भाग्य की लकीर को जानता हूं, और एक सन्यासी को देखकर कहता है कि तुम्हारे भाग्य में तो सम्राट बनना लिखा है, तुम ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा संन्यस्त जीवन बिता रहे हो। उस सन्यासी के हृदय में आशा जागती है, मैं और सम्राट, और ये कर क्या रहा हूं, यहां पर भिक्षा मांग रहा हूं, क्या ये भी कोई जीवन है। और कहता है मेरे हाथों में क्या क्या लिखा है बताओ। वो कहता है अब मैं नहीं आने वाला, तुम लोग जाओ। दो ही बच जाते, एक तो वो सन्यासी जो उस आश्रम से आया था, छोटे आश्रम से बड़े आश्रम लेने के लिए, और एक दूसरा शिष्य। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, वहां एक कन्या आती है। वो कहती है कि मेरे पिता सुबह से निकल पड़े हैं, शिकारी है, माँ तो मर चुकी है, और इस जंगल में मुझे भय लगता है, क्या तो आप में से कोई, दोनों में से कोई एक मेरे साथ रुकेगा। पहला सोचता है जब से आश्रम में आया हूं ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, ठूस ठूस के भर दिया है आश्रम वालों ने। जीवन क्या है तो जाना ही नहीं। एक कहता है कि मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, और वो उसके साथ चला जाता है। अब एक ही बचता है, वही जो उसी आश्रम से आया था, और वो अपने प्रधान के पास पहुंचता है, और वो प्रधान, वो लामा मरते हुए उसे कहता है कि मैं जानता था तुम ही आओगे, और तुम ही योग्य हो, और तुम ही उत्तराधिकारी हो, तुम्हारी ही मुझसे सच्ची प्रीत है, और प्रीत की रीत निभाने वाले केवल तुम हो। केवल एक ही पहुंचता है, क्यों? अभी ये प्रश्न है सभी से। ऐसा उसने क्या कर दिया कि वो एक ही पहुंचा, और जो बारह थे वो कहीं कहीं अटक गए और कहीं कहीं रुक गए। क्या किया उसने, ऐसा क्या था उसके पास, इसी की चर्चा आज करेंगे। तो आज क्षमा परवाने, क्षमा किससे मिलने आया है, परवानों से मिलने आया है। रूहानी महफिल है, इस रूहानी अंजुमन में, इस रूहानी महफिल में एक एक क्षमा अविनाशी है, एक एक परवाना अविनाशी है, क्षमा अविनाशी है, और ये जो रूहानी प्रीत है वो भी कैसी है, अविनाशी है। क्षमा एक ही है, एक ही शिखा, निर्धूम शिखा। दुनिया में कोई भी इस प्रीत को जान नहीं सकता। जिसने जाना उसने सब कुछ पाया, जिसने नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं पाया। और जानने की विधि क्या है, जो पहला सन्यासी था जो पहुंचा, उसने क्या क्या किया, क्यों वो पहुंचा और बाकी क्यों नहीं पहुंच पाए। जो एक सन्यासी एक शिष्य था वो आकर्षित हुआ, जब उसे प्रलोभन मिला। किस बात का? गायन का। वो गाना चाहता था, किसी राज्य में राज गायक की आवश्यकता थी और वो चला गया उस राज्य में। परंतु ये जो सन्यासी था, उसके हृदय में ही संगीत था, उसके हृदय में ही गीत बज रहा था। कौन सा गीत? एक बाप की महिमा का गीत, सर्व प्राप्तियों का गीत, श्रेष्ठ जीवन की महिमा का गीत, ज्ञान का गीत। जिसके हृदय में ही गीत बज रहा है, जिसके जो स्वयं ही गीत गा रहा है, वो किसी और के लिए गीत नहीं गा सकता, कुछ पाने के लिए नहीं गा सकता, पा लिया है इसके लिए स्वतः ही गीत बज रहा है। यह गाना प्रीत की रीत निभाना है। तो जो सन्यासी था उस कहानी में, जो स्वतः ही गा रहा था, वो किसी भी प्रलोभन में आ नहीं सकता, मुख से कुछ भी व्यर्थ नहीं निकल सकता, बाबा ने आज कहा है। दूसरा, नृत्य जानता था परंतु चला गया राज कन्या को नृत्य सिखाने के लिए। परंतु ये जो सन्यासी था, उसके तो हृदय में ही नृत्य बज रहा था, नृत्य हो रहा था, खुशी का डांस। क्या कहा बाबा ने? खुशी का डांस, हाथों का और पैरों का। हाथों से जो कुछ भी किया जा रहा है, कर्म योगी की अवस्था है, वो सब कुछ नृत्य ही है। पैरों से जो कुछ भी किया जा रहा है, वो सब कुछ नृत्य ही है। खुशी की डांस, कर्मयोगी जीवन, जहां अंतस में ही यह नृत्य हो रहा है, वो उनके बीच में कुछ नहीं आ सकता, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्या कहा बाबा ने? कोई भी बाप और उसके बीच में नहीं आ सकता, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तीसरा शिष्य क्या हुआ उसका? किसी और की आवाज से प्रभावित हो गया, किसी और गुरु के पास चला गया और किसी और गुरु को सुनने लगा, और अपना गुरु थोड़ा कम बुद्धिमान जान पड़ा उसे। इसकी वाणी में और इसके बोल में कुछ राज दिखा उसे। कहते तो सभी थे कि हमारी अपने गुरु से बहुत प्रीत है, परंतु तीसरा रुक गया क्योंकि दूसरे को सुना। मुरली में बाबा ने कहा, जो केवल एक बाप को सुनते, एक ही मीठा साज। कौन सा साज है वो? मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे और लाडले बच्चे। जो ऐसा साज सुनते हैं, उनकी बुद्धि में और कुछ आ नहीं सकता, वो दूसरा कुछ समझेंगे भी नहीं, केवल एक को सुनते हैं। परंतु वो शिष्य प्रभावित हो गया, दूसरों से प्रभावित हो गया और वहीं रुक गया। शायद बहुव्यक्त नाद वो नहीं सुन रहा था, शायद वो परमात्म वाणी उसके अंदर नहीं गूंज रही थी, उसे सुनाई नहीं पड़ रही थी। तो केवल उसी एक को सुनना, केवल उसी एक की आवाज। चौथा, थक गया। थक कर क्या किया उसने? सो गया, सोना अर्थात। परंतु वो जो सन्यासी था, वो नहीं सोया। क्यों नहीं सोया? क्योंकि उसका सोना वो सोना नहीं था जो कि संसार का सोना है। उसका सोना अर्थात देह से अलग हो जाना, देह से डिटैच हो जाना, अशरीरी हो जाना और बाप की याद में खो जाना, अर्थात सोना। जो ऐसा सोता है, उसे वह सोना खींचता नहीं। सोना और सोना दोनों नहीं। पांच पांचवा सन्यासी, पांचवा शिष्य। पांचवा शिष्य का क्या हाल हुआ? उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? दुखी हो गया। जब शहर को देखा, उस गांव को देखा, वहां की सजावट को देखा, सोचने लगा कि ये क्या जीवन है आश्रम का। सुबह से लेकर शाम तक वही दिनचर्या, वही लोग, वही परिवार, कुछ और भी तो चाहिए। बाहर की थोड़ी चमक दमक वो भी तो देखे। और वो पांचवा शिष्य उदास हो गया। परंतु सन्यासी उदास नहीं हुआ। क्यों? रियलाइजेशन। क्या कहा बाबा ने आज? सेल्फ रियलाइजेशन। जो रियलाइज करते हैं वो डिप्रेशन में जा नहीं सकते, वो तो बाप को तलाक देते हैं तब कहीं डिप्रेशन में जाते हैं। बाप ही तुम्हारा कंपेनियन है। जब इस बात को भूलते हैं तब डिप्रेशन में जाते हैं। तो जिसने बाप को अपना साथी बनाया है वो किसी भी तरह के अवसाद से ग्रस्त नहीं हो सकता, कोई भी दुख अंदर नहीं आ सकता। गॉड जहां सुप्रीम कंपेनियन है, गॉड की जहां सुप्रीम कंपनी है, छठवा शिष्य। दूसरों छठवा शिष्य के सामने कौन सी माया आई? वाद विवाद। मैं जागृत हुआ, कैसे कोई मुझे हरा सकता है, और वहीं रुक गया। जब तक इसको वाद विवाद में न हराऊं, नहीं। परंतु वो जो सन्यासी था उसमें क्या था? निमित्त भाव। जितना अधिक निमित्त भाव और जितना अधिक नम्र चित्त, उतनी ही सेवा अधिक बढ़ेगी। मैं टीचर हूं, मैंने किया, ये जो आई कॉन्शियसनेस है, ये जो मैं का भाव है, क्या कर देती है? खुशी को गुम करती है, नशे को गुम करती है, और सर्विस ढीली हो जाती है। बाबा ने कहा तुम सभी निमित्त शिक्षक हो, इंस्ट्रूमेंट टीचर्स, रूहानी सेवाधारी हो, सभी विश्व की स्टेज पर हो, श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हो, हीरो एक्टर्स हो। तुम्हारे अंदर ये मैं नहीं आ सकता। उस शिष्य के अंदर मैं जागृत हुआ। जब किसी ने ललकारा वाद विवाद के लिए, शास्त्रे वादि भयम्, बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ लो तो वाद विवाद का भय रहता है हमेशा, और वो वहीं रुक गया। मैं जागृत हुआ। सन्यासी ने समझाया परंतु फिर भी नहीं माना और वहीं रुक गया। सातवां शिष्य, क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ? दूसरों के परिवर्तन में लग गया। बाबा ने कहा है स्व परिवर्तन पर अटेंशन देना है। क्या कहा? स्व परिवर्तन पर अटेंशन देना है। स्व परिवर्तन पर अटेंशन होगा तो हर घर की आत्मा को बदला जा सकता है और इस संसार को बदला जा सकता है। और दो बातें थी जो छूट गई बताना। एक दूसरा शिष्य जब जाते हैं तो एक बहुत बड़ा पुल बीच में आता है, और एक शिष्य भयभीत होता है इस पुल को देखकर, क्योंकि पुल बहुत ही चरमरा रहा है, गिरने वाला है, अब गिरा तब गिरा, तो वो शिष्य वहीं रुक जाता है। और एक दूसरा शिष्य जो होता है पुल पार करने के बाद उसे अपने गांव के कुछ लोग मिलते हैं वहां पर, और एक जैसे उनको मिलता है और उनकी स्थिति को देखता है, इतने अमीर हो गए और मैंने क्या पाया, एक असंतुष्टता का भाव उसके अंदर जागृत होता है। ये दो बातें और होती है। तो दो शिष्य वहीं रुक जाते हैं, एक तो पुल से पहले एक पुल के बाद बाबा ने कहा है, वह जो सन्यासी है निर्विघ्न और विघ्न विनाशक, चाहे कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए वो सन्यासी नहीं रुकता है, बाकी वो एक दूसरा रुक जाता है। ऐसी निर्विघ्न स्थिति, ऐसी विघ्न विनाशक स्थिति अर्थात प्रीत की रीत निभाना। और दूसरा शिष्य उधर जाकर असंतुष्ट हो जाता है। सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना, ये है प्रीत की रीत निभाना। काफिला आगे बढ़ता है और एक शिष्य क्या देखता है, अपने पुराने मित्र पिकनिक कर रहे वन में, वन कीड़ा, और सोचता है इनका साथ कब मिलेगा। संगम युग पर बाप जो चाहे वह रूप धारण करता है, चाहे बाप का, चाहे सखा का, चाहे और कौन सा रूप, टीचर का। ऐसा अनुभव ना कोई करा सकता है ना कोई कर सकते है, बहुरूप का अनुभव और कोई नहीं करा सकता। एक बाबा ने इस एक ही वाक्य में अपनी भी महिमा की है तो हमारी भी महिमा की है। ना कोई करा सकता है और ना कोई कर सकते हैं, उसके सिवा ये अनुभव कोई नहीं कर सकता, करा सकता, और हमारे सिवा ये कोई कर नहीं सकते। बाप ही जिनका साथी है, बाप ही जिनका सखा है, बाप ही जिनका सर्वस्व है, उनके जीवन की पिकनिक एक ही के साथ है, वही सर्वस्व है, और किसी मित्र की आवश्यकता नहीं, और बाहर के किसी प्रलोभन की आवश्यकता उन्हें अपनी तरफ नहीं खींच सकता। अगला शिष्य कहां रुक गया, ज्योतिषी के पास, क्या देखने गया, अपना भाग्य। संगम पर हमारे भाग्य की रेखा किसने खींची है, स्वयं भगवान ने रेखा खींची है, तो ये रेखा कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए, अटूट होनी चाहिए। अगर ये रेखा टूटती है या कट हो जाती है तो जोड़ने के बाद भी वो वैसी नहीं रहती। तो यहां होमवर्क दिया है बाबा ने, कौन सा, लिस्ट बनाओ किसकी, अपने भाग्य की। अमृत वेले से ही भाग्य मिला है तुमको, उठते ही परमात्मा से मिलन। ये आंखें मिली है किस लिए और ये कान मिले हैं किस लिए, मुरली, मुरली सुनने के लिए कान मिले हैं, अच्छा, और आंखें किस लिए मिली है, बाबा को देखने के लिए। देखना है तो उसी एक को देखो, उससे हसीन और उससे खूबसूरत इस संसार में और कोई नहीं। एक ही को देखने के लिए आंखें मिली है और एक ही को सुनने के लिए कान मिले हैं, और पैर किस लिए मिले हैं, कदम पर कदम रखने के लिए ये पैर मिले हैं। उसी के साथ उठना, उसी के साथ बैठना, उसी के संग खाना, उसी के साथ रहना, ऐसा यह जीवन। बिलीव वी मूव एंड हैव अवर बीइंग इन हिम, ऐसा ये जीवन जहां वही सब कुछ है, कितना सुखद जीवन है। तो एक शिष्य कहां रुक गया, ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी के पास कौन कौन जाता है, माताओं में से है कोई जो जाते हैं, अपना भाग्य, भाग्य की रेखा में क्या है, भाग्य में क्या मिलने वाला है, तो स्वयं भगवान जिनका भाग्य बना रहा है उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला शिष्य कहां रुक गया, बारहवा, उस स्त्री के पास रुक गया, किसी को आधार समझा और किसी को आधार बनाया और किसी को बैकबोन समझा। तुम्हारा बैकबोन कौन है और तुम्हारा आधार कौन है, किस पर अवलंबन है तुम्हारा? स्वयं भगवान पर। जब वही आधार है तो और किसी आधार की आवश्यकता नहीं। यदि ये आधार निकल जाए तो बाबा ने कहा तुम थक जाओगे, इसके लिए इस संसार के किसी देहधारी को आधार बनाना, किसी देहधारी से अपेक्षाएं रखना, किसी देहधारी को सर्वस्व बनाना, किसी देहधारी से सब कुछ शेयर करना, तो इधर का प्यार, इधर की प्रीत, इधर की प्रीत की रीत निभाना कम हो जाएगा। तो कितनी बातें हो गई? 12। पहली, प्रीत की रीत निभाने के लिए क्या करना है? गाना है, रूहानी गीत। बाबा ने कहा ऐसे रूहानी गीत गाने वाले, रूहानी स्नेह का, स्नेह के साज, तो ऐसा गीत गाने वाले। स्वतः ही गीत निकल रहा है, गा नहीं रहे, स्वतः ही आ रहा है। दूसरा, डांस। विदेश में, पाश्चात्य जगत में बहुत बड़ा डांसर हुआ है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन ने एक जगह लिखा है कि जब मैं डांस करता हूं, ऐसा डांस करता हूं, मेरी एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वेयर डांसर एंड डांस बिकम वन, नृत्य करने वाला और नृत्य एक हो जाता है। मैं खो ही जाता हूं, मैं भूल ही जाता हूं कि कौन है ये व्यक्ति जो डांस कर रहा, और मैं खुद ही डांस बन जाता हूं, और वो सृष्टि का डांस मुझे सुनाई देने लगता है। वो देह तो रहता ही नहीं है उसमें, एक अद्भुत अनुभव होने लगता है, सैक्रेड एक्सपीरियंस। हमारा कौन सा डांस है? खुशी का डांस। हमारा कौन सा डांस है? खुशी का डांस। हाथों का डांस और पैर का डांस। पैर के कौन कौन से डांस है राजीव भाई? पैर का कौन सा डांस है? कदम पर पदम, कदम कदम में पदम का डांस। और जहां जाएंगे वहां सेवा। कहा ना बाबा ने, हर एक को अलग अलग सेवाएं मिली है, किसी को भोग लगाने की, किसी को भोग बनाने की, किसी को मधुबन में आत्माओं को लाने की, और किसी को आत्माओं को ज्ञान सुनाने की। परंतु ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है सेवाधारी। बाप दादा हर बच्चे को सेवाधारी के रूप में देखते हैं, सभी सेवाधारी है। तो जहां हमारे कदम जाएंगे आत्माओं का भाग्य जगेगा, जागृति आएगी आत्माओं में, ऐसा हमारा डांस है, खुशी का डांस। और सुनते क्या है हम? वह साज, वह मीठा साज, वह स्वीट म्यूजिक, वह अव्यक्त आवाज उसकी। और तीनों से थक जाओ तो क्या करो? सो जाओ। कहां सो जाओ? बाबा की गोद में। बाबा ने कहा याद ही गोद है, याद की गोद में सो जाओ, लैप ऑफ रिमेम्बरेंस। अशरीरी हो जाना, स्पिरिचुअल ड्रिल करना, बार बार स्वयं को देह से अलग कर देना, डिटैच कर देना। ये देह में नहीं, नच भाती भूत संगम, ये भूत का संग, ये पंच तत्वों का शरीर मैं नहीं, मैं भिन्न हूं, पृथक हूं, अलग हूं, डिटैच हूं, एक चैतन्य हीरा हूं, आत्मा हूं। यह अनुभव अर्थात सोना। पांचवा, सेल्फ रियलाइजेशन। डीप रियलाइजेशन है तो डिप्रेशन नहीं होगा। जितना रियलाइजेशन डीप है उतना डिप्रेशन नहीं होगा, नहीं तो डिप्रेशन तो जीवन में जैसे समाया हुआ है। WHO कहता है 35 करोड़ लोग आज की तारीख में दुनिया में डिप्रेस्ड है। जर्मन का फिलोसोफर हुआ है आर्थर शोफेनहावर। शोफेनहावर एक दुखद फिलोसोफर है, थिंकर है। वो कहता है जीवन संताप है, दुखों से भरा हुआ है। और पहली बार उसने जब भगवत गीता पढ़ी तो अपने सिर पर उठाकर नाचने लगा, इतना उसको वो भाग गई, ऐसी उसको बातें उसमें मिली। उसका जो जीवन का दृष्टिकोण था विषाद योग, जैसे अर्जुन की स्थिति थी शोफेनहावर की भी वही स्थिति थी। तो जैसे उसे गीता मिली उसके जीवन का डिप्रेशन समाप्त हो गया। उपनिषद्स आर द सोलेस ऑफ माय लाइफ एंड शैल बी द सोलेस ऑफ माय डेथ, इतना उसने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया और कहा कि ये जो उपनिषद है मेरे जीवन की सांत्वना है। कहा जीवन दुखों में डूबा था, कहा मैं उदास था, अवसादग्रस्त था, और जैसे आशा की किरण मिली। लोगों ने कहा ये क्या हो गया इसे, गीता क्या पढ़ ली, सिर पर गीता उठाकर गलियों में नाचने लगा। पेसिमिस्टिक फिलोसोफर है शोफेनहावर, जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण हर जगह उसने लिखा है, पर जीवन में क्रांति घटित हुई। सेल्फ रियलाइजेशन हमें हुआ है तो डिप्रेशन कैसे आ सकता है। पर क्या हुआ है, प्रश्न ये है। और यदि अभी भी दुखी है, अभी भी निराशा है, अभी भी डिप्रेस्ड और डिस्पोंडेंट माइंड है, कहीं ना कहीं शायद रियलाइजेशन पूर्ण नहीं है। छठवा अहंकार, मैं टीचर हूं, मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं। वाद विवाद जहां हुआ अहंकार जागृत हुआ उस शिष्य का, और उसने क्या कहा, जब तक इसको हरा ना दूं नहीं आऊंगा। तुमको चला कौन रहा है? एक विदेश की कहानी हमने बार बार सुनाई है और हमें बहुत अच्छी लगती है, होली शैडो की। एक व्यक्ति था इतना परोपकारी, इतना निर्माण चित्त, इतना निर्मल चित्त, इतना खुशी से भरा हुआ, हमेशा डांस करता हुआ, गाता हुआ। स्वर्ग के फरिश्ते उसके पास आते हैं कि तुम इतने अच्छे हो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। वो कहते हैं हम तुम्हें देकर रहेंगे। फरिश्ते कहते हैं हम तुम्हें कुछ सिद्धियां देंगे, कुछ चमत्कार तुम्हारे द्वारा हो जाएंगे। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं हम तुम्हें देंगे, तुम जिसे हाथ लगाओगे, अगर किसी बीमार को हाथ लगा तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो कहता है ये काम परमात्मा का है, मेरा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो कहते हैं कोई अगर भटकी हुई आत्माएं हैं उन्हें सही रास्तों पर दिखा दोगे तुम्हारे स्पर्श से केवल। वो कहता है ये काम फरिश्तों का है, मेरा नहीं। वो कहते हैं कि जीवन में तुम्हारा जीवन इतना दिव्य और इतना श्रेष्ठ हो जाएगा, इतना दिव्य गुणों से तुम भर जाओगे कि सारे तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। वो कहता है नहीं, भगवान से दूर हो जाएंगे। पर वो फरिश्ते कहते हैं कि हम तुम्हें देकर रहेंगे, हमें तो तुम्हें देना ही है। वो कहता है अगर देना ही है तो एक काम करो, मेरे द्वारा पुण्य कर्म हो, मेरे द्वारा श्रेष्ठ कर्म हो, परंतु मुझे उनका कोई ज्ञान ना हो, मुझे पता ही ना चले। तो सारे फरिश्ते मिलकर आपस में मीटिंग करते हैं और सोचते हैं और उसको कहते हैं कि जहां जहां तुम्हारी परछाई पड़ेगी, तुम्हारी परछाई तुम्हें नहीं पता चलेगा। वो कहता है उसकी शर्त होती है कि जो मैं पुण्य कर्म करूं ये भी भावना हो कि मैं भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, ये भी अहंकार है। दूसरों को बना सकता है परंतु मुझे बनाया, शायद ये भी अहंकार है। तो वो कहता है कि मैं जो भी पुण्य करूं किसी को पता ना चले। तो वो कहते हैं फरिश्ते कि जहां जहां तुम्हारी परछाई गिरेगी शैडो, अगर सूखी नदी हो तो भर जाएगी, अगर झरने हैं जिसमें पानी नहीं तो कल कल निनाद करते वो झरने गूंज उठेंगे, बीमार व्यक्ति पर तुम्हारी छाया पड़ जाए तो वो ठीक हो जाएगा। विदेश में वो कौन व्यक्ति था उसे तो जानते ही नहीं और उसका नाम पड़ गया होली शैडो। आज तक भी उसे होली शैडो ही कहते हैं। परछाई, ऐसा निमित्त भाव जहां मैं कर रहा हूं, मैं हूं, ये मैं विलीन हो गया है, केवल वह है। सातवां सन्यासी, सातवां शिष्य कहां रुक गया? दूसरों को परिवर्तन करने में। क्या कहा बाबा ने, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्वपरिवर्तन से विश्व की हर आत्मा का परिवर्तन। सूफी संत एक हुआ है जुनेद, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं जब छोटा था मेरे अंदर इतना जोश था, इतना जोश था, इतना जोश था, ताकि लगता था सारे विश्व को बदल दूंगा, ऐसी पावर थी, ऐसा पैशन था अंदर। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, लगा कि विश्व को परिवर्तन करना संभव नहीं है, मैं अपने देश को ही परिवर्तन करता हूं। और फिर उस भाव से भर गया कि मैं अपने देश को बदल के रहूंगा, जो भी अत्याचार है, जो भी अनीति है, जो भी अनाचार है, जो भी अनार्की है यहां पर, उसको नष्ट करूंगा। पर कुछ समय के बाद पता चलता है ये बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं होगा, कम से कम मैं अपने समाज को परिवर्तन करूंगा, ये तो बहुत बड़ा काम है देश को परिवर्तन करना। और उम्र बढ़ती है, सोचता है कि अब मैं समाज को परिवर्तन करके रहूंगा, और बाद में पता चलता है समाज को परिवर्तन करना मुश्किल है। सोचता है मेरे घर वाले जो है, परिवार वाले, पत्नी बच्चे, इनको मैं परिवर्तन करूंगा। और थोड़ा और बूढ़ा होता है और पता चलता है उनको भी परिवर्तन करना मुश्किल है। मैं एक ही व्यक्ति को परिवर्तन कर सकता हूं दुनिया में, और वो कौन है? मैं। घर में दिया तो मस्जिद में दिया, चैरिटी बिगिंस एट होम। स्व परिवर्तन के ऊपर अटेंशन, क्या कहा बाबा ने, स्व परिवर्तन के ऊपर। ये साधना का मार्ग है, ये साधना का पथ है, इस साधना के पथ में स्व परिवर्तन खोना जाए, स्व परिवर्तन गुम न हो जाए। यहां पर बाबा ने विश्व भर की जो भी टीचर्स बने हैं उनको एक होमवर्क दिया है, बहुत अच्छा। कारण निकालो सेवा कम होने के, घटने के कारण और बढ़ने या बढ़ाने के आधार क्या है। जो भी सेंटर्स की टीचर्स बने हैं वो इस पर लिख सकते हैं कि सेंटर पर सेवा कम हो रही है, उसके कारण क्या है। सेंटर पर सेवा बढ़ाने के आधार क्या है, ये दो बातें कही है बाबा ने मुरली में। क्यों सेवा नहीं बढ़ रही है, क्यों छोड़कर जा रही है आत्माएं, और जो छोड़ के जा रही है वो वापस कैसे आए, क्या किया जाए। कल की मुरली में है, उसके लिए भी बाबा ने डायरेक्शंस दिए है। जो छोड़ के चली गई है ज्ञान को, उनको कैसे वापस लाए, ये एक बहुत बड़ी सेवा है जो रही हुई है। नई आत्माओं को लाना तो है ही, परंतु यहां से जो डिस्टर्ब होकर गई है, क्या कारण थे, क्या हम ही तो कारण नहीं थे, क्या हमारी ही कोई ऐसी चलन तो ना थी। एक का एक और एक का सौ गुना, अज्ञान में एक का एक, यहां एक का सौ, पाप और पुण्य दोनों, सर्विस और डिससर्विस दोनों। यदि हमारी वजह से कोई ज्ञान छोड़कर चला गया है तो कितना बड़ा बोझ है। यदि हम ही निमित्त बने हैं उसके, इस ज्ञान को छोड़ने के, हमें पता नहीं, परंतु हमारी एक किसी चलन को उसने देखा, हमारे किसी एक शब्द को उसने सुना, हमारे किसी एक व्यवहार को उसने देखा, और वो देखकर उसका विश्वास, उसका निश्चय, उसकी श्रद्धा, उसका फेथ कम हो गया और उसने ज्ञान को ही छोड़ दिया। सेवा घटने के कारण, रुक्ति कला बाबा ने कहा। क्यों सेवा घट रही है, क्यों सेवा बढ़ नहीं रही है, इसके भी कारण। जो लिख सके हैं वो लिखे, विश्व भर की जो टीचर्स हैं वो विशेष रूप से इस पर लिखे, चर्चा करे। आठवां शिष्य, क्यों रुक गया आठवां शिष्य, पुल को देखा, कैसा था पुल, अब गिरा तब गिरा, और उस विघ्न को देखकर रुक गया। परंतु उन विघ्नों को अगर निचोड़ कर देखे तो एक पाठ है, एक सबक है, एक सीख है, एक लेसन है उसमें छिपा हुआ है। जो जो विघ्न हमारे जीवन में आज तक आए, अगर हम एक सरसरी नजर दौड़ाए तो कितना उन्होंने सिखाया है हमको, कितना अनुभव देकर गए हैं। अब उसी अनुभव से दूसरों को अनुभवी बना सकते हैं। सदा निर्विघ्न और सदा विघ्न विनाशक। वो सन्यासी नहीं रुका, उसने उसे अवसर जाना, अपॉर्चुनिटी समझा और आगे बढ़ गया। परंतु जो डर गया वो वहीं रुक गया। पुल को क्रॉस करने के बाद एक शिष्य वहीं रुक गया। क्यों? पुराने मित्र दिखे और लगा ये कोई जीवन है आश्रम का, उससे तो ये जीवन अच्छा है। असंतुष्टता का भाव जागा। सोच रहा था कितना यहाँ पर राजनीति है उस आश्रम में, क्या करूं वहां जाकर, उससे तो ये अज्ञानी लोग अच्छे हैं, ये तो बुरा बोलते हैं, ज्ञानी है पर बुरा बोलते हैं, ज्ञानी है परंतु व्यवहार ठीक से नहीं करते, ज्ञानी है परंतु पक्षपात, फेवरेटिज्म। ज्ञानी है कहने मात्र, लिखते बहुत है मुरली की पॉइंट्स, परंतु दिनचर्या में कहां खो जाती है। अभी भी वैसा ही क्रोध है, अभी भी वैसा ही चिड़चिड़ापन, अभी भी वैसा ही आवेश। असंतुष्ट हो जाता है वो शिष्य और वही रुक जाता है और कहता है अब मुझे नहीं आना, पता नहीं पहुंचेंगे भी नहीं, और इतने सारे लोग हैं, मैं बनूंगा कि नहीं, मुझे बनना है, वही रुक जाता है। नौवा, दसवा, उस मित्र को, उस शिष्य को क्या दिखते हैं? अपने पुराने मित्र दिखते हैं और उन्हीं के साथ पिकनिक मनाने में वो रुक जाता है। परंतु वो सन्यासी नहीं रुकता, क्योंकि स्वयं भगवान उसके साथ है, अपने उसके उस कहानी में तो उसके गुरु उसके साथ है। यहां बहुरूप बाप धारण करते हैं, जो संबंध निभाना चाहो निभा सकते हो बाबा से, बाबा तैयार बैठा है। किसी देहधारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी को अपना साथी बनाने की आवश्यकता नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। जब वही सब कुछ है और उसका परिणाम क्या हुआ, वह शिष्य वहीं रुक गया, काफिला आगे बढ़ गया परंतु वह शिष्य वहीं रुक गया, क्योंकि पुरानी यादें, वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आ गई और रुक गया और फिर से अपने जीवन पर देखने लगा, जीवन कितना दुखी हुए उस आश्रम में, उससे तो इनके साथ अच्छा है। ग्यारहवां शिष्य किसके पास गया? ज्योतिषी के पास। भगवान भाग्य बना रहा है, उठते ही भाग्य है, शायद अपने भाग्य का चिंतन कम है, शायद भाग्य की लिस्ट अभी पूरी नहीं बनाई है, शायद वो भाग्य क्या क्या है उसकी खबर ही नहीं है। इसके लिए संसार की आत्माओं के पास जा रहे हैं, भाग्य क्या है समझने के लिए, जानने के लिए। बाबा ने कहा ना, इस प्रीत की रीत को किसी ने जाना नहीं, जिसने जाना उसने सब कुछ पाया, जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं पाया, तुमने जाना है। और कितना आसान है, कितना सहज सुलभ है। अंतिम शिष्य रुक गया, देहधारी चाहिए था, ब्रह्मचर्य से काम ने खींचा और पुरानी दुनिया में ले गया, किसी और को आधार बनाया और किसी और को साथी बनाया, जबकि बाप बैठा है वो साथी है, वो बैकबोन है। एक ही काम रहा हुआ है, बाबा ने कहा आज, आपको देखना, बात करना, मिलन मनाना, चलाना, तो वो शिष्य वही रुक गया, तो एक ही गया, एक ही पहुंचा अंत में। तो टोटल कितनी बातें हुई? 12। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं और इस क्लास को पूरा करते हैं। सबसे पहला गाना, दूसरा डांस करना, तीसरा सुनना, चौथा सोना, पांचवा रियलाइजेशन, छठवा निमित्त भाव नम्रचित, सातवा स्वपरिवर्तन, बाबा ने कहा ना इस स्लोगन को याद रखो, आठवा सदा विघ्न विनाशक, नौवा संतुष्ट, दसवा बाप के साथ पिकनिक, ग्यारहवा भाग्य की लकीर अखंड अटूट लंबी और स्पष्ट, और अंतिम बाप ही बैकबोन, बाप ही सर्वस्व, उसी से सर्व संबंध। ओम शांति।
शांति से भर लीजिए, शांति से।